तो आज का विषय है कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत और प्रकृति जीत। अब कर्मेंद्रियां हम देखें, आत्मा की कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? आत्मा के पास कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। जब कर्मेंद्रिय जीत की बात कर रहे हैं तो ये भी आत्मा के कंट्रोल में आ जाए, मन भी कंट्रोल में आ जाए, बुद्धि भी कंट्रोल में आ जाए और संस्कार माना हमारी आदतें भी हमारे कंट्रोल में आ जाए। और शरीर की पांच कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा। स्किन पे हमारी स्किन है ना, बाहर सारे बॉडी पे स्किन है ना, अंदर भी स्किन, मुंह के अंदर भी है, सांस की नाली में भी है, पेट की नाली में भी, पेट की पूरी आंतों में भी है, किडनी के अंदर नाली जो है यूरेटर और पेशाब की नाली में भी है, इवन हमारी जो अंदर खून की नालियां हैं इसमें खून बहता है अच्छा या गंदा, उनमें भी नाली, उनमें भी अंदर की त्वचा है। तो ये त्वचा जो है हमारा बाहर से अंदर का संपर्क, ये भी सेंस है, ये भी कर्मेंद्री है जो हमारा बाहर से कनेक्शन जोड़ती है। तो ये जो है हमारी पांचों कर्मेंद्रियां शरीर की और तीन कर्मेंद्रियां आत्मा की, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। जब हम कर्मेंद्रिय जीत की बात करें तो ये पांचों की तीन वो और पांच ये, तीन सूक्ष्म और पांच स्थूल कर्मेंद्रियां हमारे वश में आ जाए, उसे कहेंगे कर्मेंद्रिय जीत। वो कैसे बने? और इसके पहले भी हम समझे माया जीत, पहले हम परिभाषा समझ लें। माया माने पांच विकार। तो जो पांच विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और पांच विकार के, ये पांच विकार तो देह भान का स्वभाव है, नेचर है। जैसे आग का स्वभाव क्या है? गर्मी। पानी का स्वभाव क्या है? ठंडक। ऐसे ही जो देह का स्वभाव है ये पांच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों के पांचों जो विकार हैं, अपने को देह समझते ही, दूसरे को देह समझते ही, देह के रूप में देखते ही ये पांचों विकार अपने अंदर आ जाते हैं। जैसे पानी के नीचे ठंडक है ना, आग के नीचे गर्मी है, ऐसे ही देह भान की नेचर है ये। और देह भान की आदत क्या है? जो देह भान की आदत है आलस्य। सबसे बड़ा नंबर वन दुश्मन कौन सा है ब्राह्मणों का, बोलो? सभी अनुभवी हो ना, सबसे ज्यादा क्या आता है सुबह सुबह 4 बजे योग में? क्या आता है? आलस्य आता है ना। क्लास में बैठे बैठे भी क्या आ जाती है? नींद आ जाती। कोई कितनी भी अच्छी क्लास करा रहा हो, कितनी भी अच्छी बातें बता रहा हो तो भी नींद आती है? नहीं आती है? आती है। सुबह 11 बजे नींद आती है ना, 10 बजे नाश्ता करके आते तब नींद आती है ना? नहीं आती। अच्छी, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोगों को नींद आ जाती है ना। तो आलस्य देहभान की आदत है, अलबेलापन। नहीं नहीं चलो छोड़ो ना, मुरली घर में ही पढ़ लेते, सेंटर में जाने की क्या आवश्यकता है? अमृत वेला 4 बजे नहीं, आज तो रात को 12 बजे सोए थे, अभी 5 बजे उठ जाते हैं। बाबा का तो सारा संगम ही अमृत वेला है। अपने आप को बहानेबाजी कर लेते हैं ना हम लोग। तो ये आलस करना, अलबेलापन और दूसरों में दोष निकाल, अपना दोष नहीं दिखाई देता है, दूसरों का दोष देखते हैं। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं हंस बुद्धि, एक होते हैं बगला बुद्धि। हंस कैसा है? सफेद है। बगला भी कैसा है? सफेद है। दोनों सफेद है ना, किंतु हंस के सामने अगर हम 99 कीड़े रख दें, कीड़े डाल दें और बीच में एक मोती डाल दें, तो हंस किसको खाएगा? सिर्फ मोती को खाएगा, उसको कीड़े नजर नहीं आते, ठीक है। और बगला क्या करेगा? बगले के सामने 99 मोती रख दें और बीच में एक कीड़ा रख दें, तो बगले को क्या नजर आएगा? मोती नजर आएंगे उसको? तो उसको मोती नजर नहीं आते, उसको सिर्फ कीड़ा नजर आता है। दोनों सफेद हैं, किंतु हंस बुद्धि और हंस, जिसकी हंस बुद्धि है उसकी दृष्टि भी हंस जैसी है, और जिसकी बगला बुद्धि है उसकी दृष्टि भी हंस बगला जैसी है। तो हमें आज का इंसान उसको क्या नजर आता है, उसको कभी अपने दोष नजर नहीं आते। बाबा मुरली में भी कहते हैं ना, बच्चे सभी की कौन सी नजर कमजोर हो गई है, नजदीक की नजर कमजोर हो गई, दूर की नजर बहुत तेज है, दूसरे में बहुत सारे गुण है तो भी उसके एक अवगुण है तो वो नजर आता है, और अपने अंदर हजार अवगुण है ना, वो नजर नहीं आते। तो देहबान की जो आदत है, तीसरी आदत है, वो है दूसरों में दोष देखने की आदत। जो देहबान होता है, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो अपने दोष दिखाई नहीं देते, दूसरों के दोष दिखाई देंगे। और देहबान की चौथी आदत है बदला लेने की भावना। देहबान की पांचवी आदत है शक करना। छठी आदत है अनुमान लगाना। सातवीं आदत है चिंता करना। अगर आप अपने को देह समझते हैं, दूसरे को देह समझते हैं, तो आपको चिंता अपने आप सारा दिन लगी रहती है। और आठवीं आदत है डर लगना, भय। और नौवीं आदत है जल्दीबाजी, हर काम में जल्दीबाजी करना, घाई करना, उतावल करना। और दसवीं आदत है ईर्ष्या, सबसे ईर्ष्या, जो अपने से आगे जाए, ज्ञान में भी आगे जाए तो उससे भी ईर्ष्या हो जाती है, नहीं? तो ये देहभान की आदत। तो इन पंद्रह पे विजय पाना, ये है माया जीत। ये पंद्रह ना हमारे अंदर काम का अंश क्या रहता है, कामनाएं, इच्छाएं रहना। काम का अंश है, हमारे अंदर कई बार काम विकार नहीं होता है कि तो इच्छाएं होती हैं, मैं उससे मिलूं, उससे ऐसा हो, मेरे काम हो जाए, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे ऊपर बुलाए, है ना, बहने मुझे पहचाने, बहने मुझे मेरा नाम ले क्लास में, है ना, इच्छाएं होना, कुछ भी इच्छा होना, तो ये है कामनाएं, ये भी काम विकार का अंश हो जाता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पांचों विकार का अंश भी ना रहे हमारे अंदर, पूरा कंट्रोल आ जाए इन पांचों विकारों पर, आलस पर पूरा कंट्रोल आ जाए, अलबेलापन पूरा खत्म हो जाए, दूसरे में दोष निकालने की आदत जरा भी ना रहे, बदलने की भावना किसी से ना हो, सबको माफ करें, सबके गुण दिखाई देने शुरू हो जाए, दोष दिखाई जरा भी ना दे, आत्मा की जो आदत है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है सात गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां। और आत्मा का जो आदत है वो क्या है, आलस नहीं है, सदा जागती ज्योत है, सदा अलर्ट है। आप सो जाते हो, आपका हार्ट सो जाता है क्या? अगर आत्मा सो जाए तो क्या होगा, हार्ट भी बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं बंद होगा, बंद हो जाएगा ना। तो आत्मा सदा जागती रहती है, रात को भी जागती है, दिन में भी जागती है, पूरा टाइम जागती है, क्योंकि सब कुछ चल रहा है तो आत्मा ही कारण चल रहा है। आत्मा निकल जाए तो कुछ भी चलेगा नहीं, आत्मा सो जाए तो कुछ चलेगा नहीं। तो आत्मा सदा जागती जो होता है, आत्मा कभी अलबेलापन नहीं करती है, आत्मा हर चीज में अलर्ट एक्यूरेट रहती है। धड़कन 70 रात में भी चल रही है, सांस रात में भी चल रहा है 10-12 बार, जागते हुए चल रहा है, रात में भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि रात में नहीं चल रहा है, पेट में खाना रात में ही पच रहा है, किडनी काम कर रही रात में, तो कितनी अलर्ट है आत्मा, कितनी एक्यूरेट है। और आत्मा का स्वभाव, आत्मा की जो आदत है, दूसरों में गुण देखना है। अगर आप सोल कॉन्शियस होकर अपने आप को रहो और दूसरे को आत्मा देखो, सबके गुण दिखाई देंगे, देहबान से देखोगे तो सबके अवगुण दिखाई देंगे। आत्मा की जो आदत है वो है बदला लेने की भावना नहीं, रहम दिल, किसने गलत कर दिया उससे बदला लेने की इच्छा नहीं रखते हैं आत्मा, आत्मा उस पर रहम करती है, नहीं इसने किया ना, ये विकार के वश था, उस पर दया आती है, रहम आता है। आत्मा कभी भी शक नहीं करती है, आत्मा निश्चय होता है, मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, मैं भी अपना पार्ट लेकर रही हूं कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, ये आत्मा भी कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो आत्मा को निश्चय होता है, आत्मा को भी अनुमान नहीं लगाती है, आत्मा हमेशा विश्वास रखती है दूसरे पे, आत्मा कभी चिंता नहीं करती, निश्चिंत रहती है, बेफिक्र बादशाह रहती है, आत्मा कभी भी क्या नहीं करती है, डर नहीं लगता है, आत्मा निर्भय होती है और आत्मा कभी जल्दीबाजी नहीं करती है। आत्मा जिसके अंदर मैं आत्मा हूं ये फीलिंग है, वो कभी जल्दीबाजी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो सदा धैर्यता रखेगा, धीरज रखेगा, हर बात पेशेंस रखेगा। जो पेशेंस रखेगा वो कोई पेशेंट नहीं बनेगा कभी। पेशेंस शब्द से पेशेंट शब्द आया है। और आत्मा में कभी भी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करती है। आत्मा मैं आत्मा समझता हूं तो सबके विश्व कल्याण की भावना पैदा होती है। तो ये जब हमारे अंदर ये चीज आ जाए, पॉजिटिव वाली आ जाए, नेगेटिव निकल जाए, तो हम कहेंगे माया जीत। और प्रकृति जीत माना ये शरीर हमारा पांच तत्वों का बना हुआ है। भले हमारे हार्ट खराब है, भले हमको शुगर है, भले हमको ब्लड प्रेशर है, भले हमको सिर में सिर की बीमारी है, भले हमारे कमर खराब है, भले हमारे घुटने खराब है, तो भी इन सबके खराब होने के बाद भी, बूढ़े होने के बाद भी ये हमारा साथ देते रहे। पुरुषार्थ में, याद में और सेवा में हमारा काम चलता रहे, ठीक है। मतलब जैसे दादी को, दादी दादी को देखा ना आपने, दादी जानकी को देखा, दादी कितने साल की है, कितने साल की है, 100 साल से ऊपर हो गई ना दादी, फिर भी दादी के कैसे है, प्रकृति जीत है ना। शरीर में बीमारियां भी हैं, बड़ी उम्र भी है, तकलीफ भी होती है, तो भी दादी समय पर आकर के योग कराएगी, क्लास कराएगी, सबको आशीर्वाद देगी, सबको खुश करेगी, नहीं करती है, करती कि नहीं करती है, ये किस चीज की निशानी है। शरीर कैसा भी है तो भी प्रकृति को आत्मा चला रही है। सत्युग में हम कैसे होते हैं, आत्मा स्वराज्य अधिकारी, स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य होता किस पर, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर और पांचों कर्मेंद्रियों पर, आंख नाक कान मुख और त्वचा पर और आठों अंगों पर, मतलब पूरे पूरे शरीर पर। तो देवी देवता जब है सत्युग में तो हम तीनों चीज हमारे अंदर है, कर्मेंद्रिय जीत भी है, माया जीत भी है और प्रकृति जीत भी है। तो हम हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मेंद्र जीत बनना, माया जीत बनना और प्रकृति जीत बनना। सबसे पहले हम ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण बने कैसे, अगर ब्राह्मण देखें, मनुष्य, पहले हम मनुष्य थे, अभी हम ब्राह्मण बन गए, क्या फर्क है दोनों में। मनुष्य शब्द का मतलब है मन के वश में, मन का दास, मन जो कहे वैसे उसके वश में रहना, मन में जो रिकॉर्ड हो गया मुझे इससे ही बात करनी है, मुझे यही खाना है, मुझे इसी से सुनना है, मुझे यही देखना है, तो उसके वश में आकर के मुझे जो देखना है उसके देखने के लिए 10 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे, 50 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे, जो खाना है उसके खाने के लिए कहीं भी दूर पहुंच जाएंगे, सुनने के लिए उसकी बात कैसे भी करके आधी रात भी सुनेंगे उसकी बातें, है ना। तो मन के वश में, मनुष्य मन के वश में, मन फिर किसके वश में, कर्मेंद्रियों के वश में है, आंख के वश में है, नाक के वश में है, कान के वश में है, जीभ के वश में है, मुंह के वश में है, तो उनके वश में है। तो मनुष्य इनके, मनुष्य हमेशा हद के वश में है। मनुष्य वो जिसकी बुद्धि में हमेशा हद रहती है, हद माना देह, अपनी देह याद रहती है, दूसरों की देह, संबंधियों की देह याद रहती है, जिनसे उसका कांटेक्ट है वो याद रहते हैं, देखे स्वभाव संस्कार उसके बुद्धि में रहते हैं हमेशा, मैं इसके काम क्रोध लोम अहंकार और ये 5-10 उसके संस्कार आदतें और देखे पदार्थ बुद्धि में रहते हैं, ये 4 ही चीजें बुद्धि में लगातार बनी रहती है, उसी से उसका योग लगा रहता है, जरा सा देह में कुछ हो गया उसके विचार चलते रहेंगे, माँ बीमार हो गई, पत्नी बीमार हो गई, पति बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, सारा टाइम उसी के विचार चलते रहेंगे, बुद्धि उसमें उसी की याद आती रहेगी, और कुछ ऊपर नीचे हो गया, पैसा ऊपर नीचे हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, दुकान पे धंधा खराब हो गया, किसी से किसने आपका पैसा लूट लिया, धोखा दे दिया, उसी के विचार चलते रहेंगे, नहीं ऐसा होता। और बाबा ने भी मनुष्य से हमको ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण माना ब्राह्मण बेहद बड़ा विशाल, मन जिसकी बुद्धि और मन विशाल हो, अर्थात जिसकी बुद्धि में बेहद हो, बेहद जिसकी बुद्धि बेहद हो और मन भी बेहद में हो। हद बेहद क्या है? मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा है, आत्मा बेहद है, परमात्मा शिव, शिव बाबा बेहद है। तो मैं आत्मा हूं, शिव बाबा बेहद है और मेरे सर संबंध शिव बाबा के साथ, और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अभी अभी अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि शिव बाबा सर्व संबंधों से मेरे साथ है, हर सेकंड मेरे साथ है, हर संकल्प में मेरे साथ है, हर श्वास में मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, हर समय मुझे डायरेक्शन देने के लिए तैयार है, समझाने के लिए तैयार है, समझाता रहता है, नहीं समझाता है, श्रीमत देता रहता है। और फिर शिव बाबा जो डिफॉल्ट जो बताया ना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो तो बड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है, सत्युग में जाने वाले, देवी देवता बनने वाले। तो ये जब अपने अंदर से बार बार जब हम ये चार बातें ब्राह्मणों के मन में रहनी चाहिए। अगर जरा भी देखा भान आया, देखे संबंध याद आया, तो हम क्या हो गए उस समय ब्राह्मण है हम, उसमें ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण माना एबीसीडी, ये ज्ञान सार रूप में एबीसीडी है। तो जितना अधिक हम एबीसीडी अर्थात मुरली, मुरली में क्या है एबीसीडी, आत्मा, आत्मा का ज्ञान है, बी बाबा का ज्ञान है, सी माना कनेक्शन, बाप से सर्व संबंधों का ज्ञान है, बाप टीचर सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, और डी ड्रामा शिष्य के आदि मध्यंत का ज्ञान है, कर्मों की गुह्यता का ज्ञान है, यही मुरली में होता है ना। तो जितना हम मुरली के पॉइंट्स को गहराई से मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, तो उतना क्या होता है अगर हम इसकी गहराई में जाएं। आत्मा की तीन शक्तियां ना, बुद्धि मन और संस्कार, सूक्ष्म शक्तियां। तो आत्मा के अंदर जो सात ऊर्जाएं हैं, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद और शक्तियां, ये सातों एनर्जी यहां से मैंने बताया, यहां पर दो ब्रेन है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम यहां पर है। तो यहां से आत्मा से वो एनर्जी निकल रही है, जैसे बल्ब से लाइट निकलती है ना, ऐसे वो एनर्जी निकलती है। और यहां पर वो जो कोशिकाएं हैं हाइपोथैलेमस में, वो कोशिकाएं उसको सेंस कर लेती हैं। ज्ञान से ज्ञान के विचार पैदा होते हैं और विचार तुरंत केमिकल में बदल जाते हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरोपेप्टाइड, मतलब अर्थात वो विचार, यहां पर विचार तो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा जो है वो बदल जाती है केमिकल। मत इसको कर्मेंद्र जीत बनने के लिए, मायाजीत बनने के लिए हमें समझना, थोड़ा सा गहराई समझना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि और मन और संस्कार, कर्मेंद्रियां हमारी क्यों चंचल हो रही हैं, हमारे कंट्रोल माया के आत्मा के वश में क्यों नहीं रही कर्मेंद्रियां, क्योंकि बार बार हमने इनसे विक्रम किए हैं। आंखों से गलत, मान लीजिए आपको टीवी देखने की आदत पड़ गई, कुछ सीरियल देखने की आदत पड़ गई, तो क्या बार बार वो सीरियल देखा ना, बुद्धि में वो उससे कलाकार आपके अंदर चले गए, आपके दिल में चले गए, और जो चीज आपने खाई उसका टेस्ट बुद्धि में चला गया। आपने जिसके बात बहुत मीठी मीठी बातें करता है कोई व्यक्ति, किसी की दूसरी खराब बातें बताता है, तो उसका टेस्ट आपके अंदर बैठ गया, इसलिए उस व्यक्ति से बार बार बात करना अच्छा लगता है। तो जो विकर्म किए ना इन कर्मेंद्रियों से, आंख से किया, नाक से किया, कानों से किया, मुंह से किया, हाथों से किया, वो विकर्म अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं, हर चीज की रिकॉर्डिंग होती रहती है। एक सूक्ष्म, एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी, वो तो रहती है आत्मा के अंदर, हार्ड कॉपी दिमाग की सेल्स में रहती है, और जैसे ही व्यक्ति सामने आएगा वो वापिस चालू हो जाता है, फाइल खुल जाती है, जैसे वो चीज खाने वाली चीज सामने आएगी वो चीज चालू हो जाएगी, वो व्यक्ति के सामने आते ही वो सारे सीन वापस रिपीट हो जाएंगे, फिर उसके वश ना चाहते भी उसके वश हो कि आप गलत काम कर लेंगे। 20 साल पहले भी आपने कोई गलत काम किया होगा, व्यक्ति सामने आते ही, उस व्यक्ति के सामने आते ही वो गलत काम फिर हो जाएगा। तो हमारी कर्मेंद्रियां हमें समझ होते भी हम वश में नहीं आती है। आपको सीरियल देखने की आदत पड़ गई तो वो टाइम पे अपने आप ही जाके टीवी का बटन ऑन हो जाएगा। संस्कार माना उसमें आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। अब क्या करें हम? कैसे विजय पाए, ज्ञान में चलते 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज भी गुस्सा आ जाता है। जिनका गुस्से पे मुक्त हो गया हाथ उठाओ, जिनको गुस्सा जरा भी नहीं आता, अभी गुस्सा एकदम बंद हो गया ना, हाथ उठाओ, जरा भी गुस्सा नहीं आता, कभी भी नहीं आता है। देखो कोई भी, देखो दिल से हाथ नहीं उठा सकता ना, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कारण क्या है, हमारी कर्मेंद्रियां हमारे उस पर विजय क्यों नहीं प्राप्त हुई हमारी अब तक, क्यों नहीं उसमें विजय प्राप्त कर पाए? खाने की चीज हम पता है ये नहीं खानी चाहिए, इसे खाने से हमें आलस आएगा, नींद आएगी, इसके इसके पीने से हमको उत्तेजना पैदा होगी, फिर भी हम खा लेते हैं, नहीं ऐसा करते, करते नहीं करते? हमको पता है हमें डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने को, तो भी हम खा लेते हैं, ये कर्मेंद्र जीत हुए क्या? हमें पता है नमक हमें कम खाना, हमें बीपी की बीमारी है, तो भी नमक वाली चीज खा लेंगे, पकौड़ा खा लेंगे, समोसा खा लेंगे। डॉक्टर ने बताया आपके हार्ट की आर्टरी बंद हो गई है, एसिड आपको पेट में चलता है, तला हुआ मत खाना, फिर भी खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? जो अंदर की आदत पड़ गई ना, अंदर रिकॉर्ड हो गई है, उसका टेस्ट अंदर रिकॉर्ड हो गया, वो टेस्ट अंदर खिला देता है। अब इसकी थोड़ी गहराई में समझ लेते हैं हमको कि बुद्धि क्या चीज है, और क्योंकि प्रॉब्लम सारी बुद्धि में है और मन में है और संस्कार के अंदर है, तीनों चीज को ठीक करने के लिए क्या है, हमने अगर बुद्धि मन और संस्कार ठीक कर लिया तो कर्मेंद्रियां भी वश में आ जाएंगी, विकार भी खत्म हो जाएंगे और शरीर भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। स्वराज्य अधिकारी का मतलब यही है, स्वमाने आत्मा, आत्मा का राज्य पूरे शरीर पर हो जाना, मन बुद्धि संस्कार पर भी हो जाना, पांचों कर्मेंद्रियों पर भी हो जाना और शरीर के आठों अंगों पर भी हो जाना। इसमें ऑटोमेटिक सब बातें आ गई, कर्मेंद्र जीत, स्वराज्य अधिकारी में कर्मेंद्र जीत भी आ गया, माया जीत भी आ गया और प्रकृति जीत भी आ गया। मतलब अब आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है। अब आत्मा कैसे चार्ज करेंगे हम, इसके थोड़ा सा समझ लेते हैं। बुद्धि में चार बातें हैं, खाली बुद्धि एक चीज नहीं है, बुद्धि में एक तो दिल है, इसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्शियस अंतरात्मा भी कहते हैं। बुद्धि में क्या रहता है, दिल में क्या रहता है, ये आत्मा से साथ एनर्जी निकलती है ना, वो सबसे ज्यादा वहां पर होती है। और इस छह गुण, आत्मा के पहले छह गुण है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, इनसे हमारा विवेक बनता है। विवेक माना परखने की शक्ति, परखने की शक्ति को हम विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं इंग्लिश में, और उससे हमारी निर्णय शक्ति बनती है। जिस चीज में आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है और आनंद की अनुभूति होती है, उसको आत्मा ठीक समझती है, उसको ठीक परखती है, ये ठीक है ये गलत है। जिसमें सुख की अनुभूति हो गई, जिसमें आनंद की अनुभूति होगी, आत्मा उसको ठीक समझती है, राइट? परखने की शक्ति मतलब इसको ठीक समझती है, जिसमें सिर्फ दुख की अनुभूति होती है उसको समझती है गलत है, और निर्णय फिर क्या करती है, जो अंदर रिकॉर्ड हुआ उसके हिसाब से निर्णय करती है बुद्धि। और फिर आता चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। अगर दिल में छह चीज भरी हुई है, ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान माना आत्मा ABCD अंदर भरा हुआ है, पवित्रता, इसके आधार पे मन बुद्धि आपकी पवित्र है, आपके संकल्प, शांति माना आपके अंदर सिर्फ सत्य संकल्प चलते हैं, पॉजिटिव संकल्प चलते हैं, नेगेटिव और वेस्ट जरा भी नहीं चलता है। ये जितना ज्ञान को आप बार बार रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं, ज्ञान को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय ये क्या करना, क्या करना चाहिए, मेडिटेशन क्या चीज है, योग क्या चीज है, योग कुछ और नहीं है कि ऐसे बैठ के किरने आ रही है, ऐसे ऐसा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, चलते फिरते अपने आप से बात करना है, मैं कौन हूं, जैसे मैं अपने आप को कहूं तो मैं अपने आप को बोलूं मैं सतीश गुप्ता नहीं होते, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर तो मैं 35 साल से बना हूं, और डॉक्टर भी सारा दिन नहीं हूं, सिर्फ 6 घंटा डॉक्टर हूं, ये तो मेरा प्रोफेशन है, धंधा है। मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं, देह तो एक दिन पहले थी, एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा, मैं आत्मा निकल जाऊंगी, तो चलते मैं कौन चला रहा है, बोल कौन रहा है, आत्मा बोल रही है, देख कौन रहा है, आत्मा देख रही है, अपने आप से चलते फिरते ये बात करना, अपने आप से उस ज्ञान और योग में क्या फर्क है, ज्ञान माना मैं आत्मा हूं, मैं स्थूल देह नहीं, मैं देह को चलाने वाली आत्मा हूं, और योग क्या है, मैं थूल देने मैं देखो चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये अनुभव करना ये योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं ये ज्ञान है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं ये अनुभव करना ये योग है। कोई मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि हमारा राजयोग मेडिटेशन आधा घंटा सुबह किया, अमृत वेला किया, आधा घंटा शाम को किया, फिर सारा दिन भूल गए, ये मेडिटेशन नहीं है। जैसे हम 24 घंटा श्वास लेते हैं ना, ऐसे 24 घंटा ये अटेंशन रहे कि मैं देह नहीं मैं आत्मा, 24 घंटा अटेंशन रहे मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा सात गुणों का स्वरूप हूं और परमात्मा मेरा बाप सातों गुणों का सागर है। सात 24 घंटा अनुभव रहे कि मेरे एक एक संबंध बाप के साथ कैसे हैं, सर्व संबंध, मुख्य 9 संबंध बाबा से हमारे होते हैं, बाकी तो सर्व संबंध है। एक तो मां का संबंध बहुत गहरा बाप से अनुभव होना चाहिए, बाप का संबंध बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु माना बड़े भाई का संबंध। देखो मां के संबंध से बाबा क्या करता है, हमको दिव्य बुद्धि की, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देता है, जो एक सेकंड में हमें सूक्ष्म वतन में बैठे बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। बाप के रूप में बाबा तीसरा नेत्र दे देता है, त्रिनेत्री ना देता है हमको, तीसरा नेत्र आंख, समझ, ज्ञान माना समझ, समझ का तीसरा नेत्र दे देता है। अब मैं किसी को भी देखता हूं ना तो समझ के देखता हूं, ये आत्मा है, ये मेरा पति नहीं है ये आत्मा है, ये मेरा बेटा नहीं है ये भी आत्मा है। पहले मैं बेटा समझता था, बेटा बेटा समझती थी, अभी बेटा नहीं समझती, बेटी नहीं समझती हूं, आत्मा समझती। ये मेरे घर में क्यों आए, मेरा पति क्यों बना, ये मेरा बेटा क्यों बना, बेटी क्यों बनी, पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, कुछ लेन देन का पार्ट है, इसलिए मेरे इस जन्म में आके मेरा पति बन गया, मेरी बेटी बन गई, मेरा बेटा बन गया, मेरी सास बन गई, मेरी मां बन गई, मेरा बाप बन गया या मेरा ससुर बन गया, राइट। तो ये ननद बन गई या जो भी संबंध कहो आप, तो ये मेरे उस पिछले जन्म का हिसाब किताब है, इसलिए मेरे मुझे अब क्या करना है, मुझे हिसाब किताब से चुकतू करना है, जो मैंने पिछले जन्म किया वो मेरे साथ वापस करेंगे कि तो मुझे सहन करना है। अगर मैंने सहन करके समा लिया तो हिसाब किताब चुकतू हो गया, अगर मैंने कुछ वापस बोल दिया तो हिसाब किताब फिर 100 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो ये समझ को यूज करना है, तो इसका लगातार जब यूज करें, खाली आधा घंटा बैठ के नहीं, सारा दिन ये अनुभूति होनी चाहिए। ए बी सी, सीमा संबंध, डी मन ड्रामा, जो भी कुछ हुआ है अभी तक उसके बारे में सोचना। इंसान के ज्यादा वैध संकल्प कहां चलते हैं, नेगेटिव कहां चलते हैं, मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। बाबा ने क्या बताया, बच्चे इस दुनिया में इस ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। हिसाब किताब का मतलब क्या है, खाली कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। मैंने एक बार हमारे सीए हैं जो, उनसे मैंने पूछा था, अगर 100 साल पहले आपने किसी से 1000 रुपया उधार लिया था और वापिस नहीं दिया तो 100 साल के बाद ब्याज कितना हो गया पता है आपको उसका, 52,48,00,000 रुपया। तो 1000 रुपये देना पड़ेगा मूलधन, वही आपका बच्चा बन के आ गया, बेटी बन के आ गया, वही आत्मा जिससे आपने 1000 रुपये लिया था, वो मूलधन तो उसको 1000 रुपये देना ही पड़ेगा और ब्याज, ब्याज भी देना पड़ेगा। तो 52 करोड़ सारी उम्र में दे दोगे आप उसको बच्चे को, तो जब तक 52 करोड़ दोगे नहीं वो संतुष्ट होगा नहीं, 52 करोड़ का आपके पास है नहीं तो आप वो कभी संतुष्ट आपसे होगा ही नहीं, कितनी सेवा करो उसकी तो भी नहीं संतुष्ट होगा। आपने देखा ना, आपके बच्चे होते हैं, आपके पति होते हैं, आपके संबंधी होते हैं, आप सारा दिन रात सेवा करते हैं तो भी क्या बोलते हैं आपको, खुश रहते हैं आपसे तो भी खुश नहीं होते, क्योंकि आपने कुछ ऐसा उनसे लिया हुआ है। आपने एक गाली दी, 100 साल के बाद कितनी हो गई वो गाली, ब्याज कितना हो गया उसका सोचो। अब आपको 1000 गाली देंगे तो भी कम पड़ेंगे, तो भी पूरा नहीं होगा। ये कर्मों का हिसाब किताब है, क्योंकि अब बाप साथ है, सर्वशक्तिमान साथ है, सहन करने की शक्ति का सागर साथ में है, तो आप सहन कर सकते हो। पूरे कलह में बाप साथ नहीं होगा, इसलिए बाप की याद है तो सहन कर सकते हो, बाप भूला तो सहन नहीं होगा। باپ بھولا تو سما نہیں پائیں گے, سہن تو کر لیں گے. ماتائیں کیا کرتی ہیں, سہن تو بہت کچھ کر لیتی ہیں, چپ رہتی ہیں, بولتی نہیں ہیں, پھر سما نہیں پاتی ہیں. اس لیے سر میں درد ہوتا ہے, کمر میں درد ہوتا ہے نا, گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ میں گیس بننے لگتی ہے, پیٹ بھاری ہے تو قبضی ایسڈ بننے لگتا ہے, کیونکہ سماتی نہیں نا, اندر ابلتا رہتا ہے, وہی بات ابلتی رہتی ہے. بس میری بات مت پوچھو, میں کتنا سہن کیا ہے, میں تب سے پیدا ہوئی تب سے سہن ہی کر رہی ہوں, جب سے میری شادی میں سہن ہی کر رہی ہوں. گھر میں ماں باپ کا سہن کیا, اب گھر میں یہاں پہ آ کے ان بچوں کا اور ان کا سہن کرنا پڑتا ہے. تو مطلب سہن تو کیا, سمایا نہیں ہے, سما لیتے تو سر درد نہیں ہوتا تھا, سما لیتے تو پیٹ میں درد نہیں ہوتا تھا. تو بدھی میں جو ہم نے دل ہے نا, دل, اب جو دل جسے کانشیسنیس کہتے ہیں, اس میں اگر اے بی سی ڈی بھرا ہوا ہے تو آپ کی وویک کام کرتی ہے, پرکھنے کی شکتی, تب بدھی نرنے کرتی ہے سمے پر, اور تب آپ کا چت شانت رہتا ہے, ایکاگر رہتا ہے, آنند میں رہتا ہے. چت میں اگر ستیہ ہے تو دل چت میں بھی دل میں ستیہ ہے, ستیہ ہمارا ایک گیان ہے, تو چت ہمارا شانت رہتا ہے, ایکاگر آنند میں رہتا ہے. اگر دل میں کوئی دیہداری آ گیا, اپنی دیہ آ گئی, کوئی بچہ بھا گیا, پتی بھا گیا, وہی اس کے دل میں اسی کی یاد ہے, دے کے سمبندوں کی یاد ہے, دے کا سبھاؤ یاد ہے, دے کے سنسکار اندر دل میں چلے گئے ہیں, دے کے پدارتھ کوئی چیز سے پیار ہو گیا ہے, گھر کی کوئی چیز ہے بہت اچھی لگتی ہے, گہنا اچھا لگتا ہے, کوئی چیز پیسہ اچھا لگتا ہے, کوئی چیز کپڑا بہت اچھا لگتا ہے, وہ دل میں چلا گیا, تو پھر آپ کا وویک کام نہیں کرتا ہے, پھر بدھی نرنے نہیں کر پاتی ہے, اور وہ فائل جو نرنے نہیں کر پاتی وہ ساری وہ سب چت میں چلا جاتا ہے, سب کانشیس مائنڈ, چت چنچل ہو جاتا ہے. جب چت چنچل ہوتا ہے تو پھر ہماری جو سمرتیاں ہیں نا, وہ ساری خراب والی سمرتیاں جاگرت ہونے لگتی ہیں, کام کرودھ لوبھ موہ انکار کی سمرتیاں جاگرت ہونے لگتی ہیں, وکاروں کی سمرتیاں, اس نے ایسا کیا تھا, یہ ایسا ہے, یہ ایسی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, سب کے اوگن دکھائی دینے لگتے ہیں, بگلا درشٹی ہو جاتی ہے, بگلا بدھی ہو جاتی ہے, نظر بدل جاتی ہے. رائٹ, سمجھ میں آ رہی ہے بات, آپ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اگر ہم کو سچ مچ میں کرمیندر جیت بننا ہے, مایا جیت بننا ہے, تو کیا کرنا پڑے گا, دل میں سے سب کو نکالنا پڑے گا. کس کو اس کو نکالنا, بابا نے مرلی میں کہا ہے, بچے دے کے سرب سمبندھ, دے کے سبھاؤ سنسکار, دے کے پدارتھوں کو بدھی سے تیاگ. اگر جب ان کو بدھی سے نکالیں گے تو ہی ہم اپنے کو آتما سمجھ سکیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, بدھی میں ان کو بھی رکھتے ہیں اور بابا کو بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پوسیبل نہیں. دیکھو میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں اپنے ہاسپٹل کی. جب میں ایم بی بی ایس پاس کیا میں دلی سے, تو انٹرنشپ جب کر رہا تھا میں, تو ہمارا ایک بچوں کے وارڈ میں میری پوسٹنگ ہوئی, اور بچوں کے وارڈ میں ایک نرس تھی, بہت پتلی دبلی سی نرس تھی. اس کو ہمارے 60 بیڈ کا وارڈ ہوتا تھا, بڑے لمبے لمبے وارڈ ہوتے تھے, 60 بچے ایڈمٹ ہوتے تھے, 60 بچے, کوئی 2 سال کا, کوئی 1 سال کا, کوئی 4 سال کا, کوئی 6 سال کا, کوئی 8 سال کا, چھوٹے بچے. اور بچے پتا کہ دوائی کیسے کھاتے ہیں, وہ نرس اکیلی جا کر کے 60 بچوں کو دوائی دے کے جاتی تھی, کس کو پیار سے ایسے کر کے کیسے کر کے پیار سے دے دی. کوئی بچہ روتا بھی نہیں تھا اس سے, اور دوائی دے کے بڑے پیار سے آ کے پھر اپنا کام اور کام کرتی تھی. تو میں نے کہا, سسٹر آپ تو بہت اچھا سیوا کرتی ہو, آپ تو بہت اچھی کر کے سارے بچوں کو چپ چپ چپ, اور نرس تو بچوں کو رلاتی ہیں, بچے رونے لگتے ہیں اس کے سامنے, آپ تو بہت اچھے سے کرتی ہو. کہتے ڈاکٹر صاحب میں تو ان 60 بچوں کو دوائی دے دیتی ہوں, میرے گھر میں میری بچی ہے 1.5 سال کی, وہ بیمار ہوتی ہے تو میں اس کو تھپڑ مارتی ہوں اور میں خود رو پڑتی ہوں, وہ تو روتی ہے میں بھی روتی رہتی ہوں. اس 60 کو پیار سے دوائی دیتی ہے, اور اپنی بچی کو کیا کرتی ہے, تھپڑ مار کے دوائی دیتی ہے, ناک پکڑ کے دوائی دیتی ہے, اور خود بھی روتی ہے بچی بھی روتی ہے. کیوں, کیا فرق ہے دونوں میں, وہاں پر موہ ہے اور وہاں موہ نہیں ہے. وہ بچی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے, بدھی میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ 60 بچے اس کی بدھی میں نہیں بیٹھے ہوئے. अगर सचमुच में हमें सेवा करनी है, अच्छी सेवा करनी है, सच्ची सेवा करनी है दूसरों की भी, तो उनको बुद्धि में से निकाल दो, दिल में से निकालो। दिल में बाबा तब आएगा, बाबा कहते हैं ना, बाबा ने पिछली साल मुरली में कहा, बच्चों के दिल में कौन? मेरा बाबा। और बाबा के दिल में कौन? मेरे बच्चे। तो बाबा के दिल में कौन से बच्चे हैं और किसके दिल में शिव बाबा है? जिसका दिल सच्ची है, सच्ची दिल माना जिस दिल में ना देह है, ना अपनी देह है, ना देह का कोई संबंध है, ना देह का कोई स्वभाव है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, ना देह का कोई संस्कार जिसमें आलस अलबेलापन नहीं है, चिंता भय नहीं है, जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, जिसमें देह का कोई पदार्थ नहीं है, वो दिल सच्ची दिल है। जिस दिल में सिर्फ ABCD है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, सर्व संबंध शिव बाबा के साथ अनुभव करता है, जो करती है जो, और आत्मा की ड्रामा का सत्य ज्ञान उसकी बुद्धि में, जो हर बात को जो हुआ फुल स्टॉप लगा दिया, जो हो गया उसको फुल स्टॉप, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला है, जो इस बात को बहुत गहराई से अनुभव करते हैं, उस दिल में शिव बाबा बैठते हैं, उसके दिल में शिव बाबा है, और ऐसा बच्चा शिव बाबा के दिल में है, सुना? और जिस दिल में शिव बाबा, उसका क्या हाल होगा? उसका विवेक कैसा हो जाएगा? विजडम कैसे? उसका विवेक ईश्वर जैसा हो जाता है, और जिसका विवेक ईश्वर जैसा हो जाता है उसकी क्या करेगी बुद्धि? दिव्य बुद्धि, डिवाइन बुद्धि हो जाती है, उसका चित्त फिर शांत हो जाता है, एकाग्र आनंदमय हो जाता है, और ऐसे चित्त वाले के अंदर उसकी स्मृतियां कैसी जागृत होंगी? संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की स्मृतियां जागृत हो जाएगी, फरिश्ते स्वरूप की स्मृतियां जागृत हो जाएंगी, देवता स्वरूप की स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिक क्या लगेगा? फिर जब हमारी स्मृति, फरिश्ते वाली स्मृति जागृत होगी, तो हमारी वृत्ति कैसी हो जाएगी? हमारी वृत्ति तब सबके प्रति रूहानी हो जाएगी, भावना सबके प्रति शुभ हो जाएगी, संकल्प हमारे श्रेष्ठ हो जाएंगे, शुद्ध और श्रेष्ठ हो जाएंगे, कल्याणकारी हो जाएंगे। दृष्टि कैसी हो जाएगी? हंस दृष्टि हो जाएगी। तो तब हमें सबके अंदर गुण दिखाई देंगे, और जब ऐसा हो जाएगा, बुद्धि और मन दोनों स्वच्छ हो जाएंगे, तो आत्मा से 7 गुण हमारी आंखों में आएंगे, नाक में आएंगे, कान में आएंगे, मुंह में आएंगे, जीभ में आएंगे, पूरी त्वचा पे जाएंगे। जब ऐसा होगा, जब 7 गुण इनमें भर जाएंगे 5 कर्मेंद्र में, तो कर्मेंद्रियों पे हमारी विजय हो जाए। जब कर्मेंद्र संतुष्ट रहेंगे ना, फिर तो 7 गुण भर गए तो कर्मेंद्र संतुष्ट, फिर कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी। क्या दिखाई देगा? सब आत्मा दिखाई देंगे, सबके गुण दिखाई देंगे, किसी के अवगुण दिखाई नहीं देंगे। सुनाई क्या देगा? किसी के अवगुण सुनाई नहीं देंगे, कोई बोलेगा भी ना तो समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। अच्छी बात सुनाई देगी, जैसे बहरे को, बहरा आदमी होता है ना, डेफ होता है ना, डेफ के क्या होता है, अपने काम की बात सुनाई देती है, नहीं तो बोलता क्या क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, काम की बात सुन लेता है, बाकी बेकार की बात सुनाई नहीं देती है। बहरे पता है ना आपको, बहरे लोग भी काम की बात तो सुन लेते हैं, और बेकार की बातों में क्या क्या करते रहते हैं, नहीं ऐसा होता है? तो ऐसा आदमी बन जाएंगे, हमारी कर्मेंद्रियां सिर्फ वही देखेंगी जो मेरे अंदर है। दिखाई क्या देता है इंसान को? जो मेरे अंदर है। मेरे अंदर बुराई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो मुझे बाहर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दिखाई देता है। मेरे मन में शिव बाबा आ गया, तो आत्मा आ गई, शिव बाबा आ गया मेरे दिल में, तो सबके अंदर सब मुझे कैसे दिखाई देंगे? चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे, सब फरिश्ते दिखाई देंगे। तो जब मेरा फरिश्ता स्वरूप जागृत होता है, तो ऑटोमेटिक मेरी स्थिति ऐसी होती है। तो इससे क्या होता है, सारा जो खेल किस चीज का है? मर्ज और इमर्ज का खेल है। जब हम मर्ज करते हैं, जैसे हम जब हम हमारा चित्त शांत और एकाग्र आनंदमय हो जाता है, तो हमारे जो जितने भी विकर्म है ना, वो मर्ज हो जाते हैं, पाप कर्म मर्ज हो जाते हैं, और अच्छे कर्म, देवता जीवन का जीवन, वो इमर्ज हो जाता है, वो स्मृतियां जागृत हो जाती हैं, और ऑटोमेटिक हमें सब कुछ अच्छा होने लगता है, फिर हमसे विकर्म होने बंद हो जाते हैं, कर्मेंद्र जीत हो जाएंगे, फिर पांचों विकारों की स्मृति खत्म हो जाती है। लाइट आ गई ना अंदर, लाइट आने से अब बुद्धि बुद्धि किसी के देह की तरफ जाती नहीं। किसी को देख के क्रोध करता है उस पर रहम आता है, क्रोध नहीं आता है। कोई लोभ करता है तो उसको देख के भी रहम आता है, किसके लिए तुम लोभ कर रहे हो, क्या लेके जाओगे, रहम आता है। मोह वाले पे भी रहम आता है, अहंकार वाले पे भी रहम आता है। अब हम रहम दिल बन जाते हैं और हम कोशिश करते हैं अपने अंदर से सकाश देने की, तो ऐसी हमारी फिर माया जीत, ऑटोमेटिक हम माया जीत बन जाते हैं। और फिर जब बाबा से हमारी करंट आती रहती है निरंतर, तो हमारी जो जो करंट आती है सातों गुणों में, एक एक सेल में वो एनर्जी बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्तियां बढ़ जाती हैं। उससे क्या होता है, हमारी शरीर हमारा साथ देने लगता है। अंत समय में दवाइयां भी नहीं होंगी, एक बार कहीं बम गिरेंगे, भूकंप आएंगे, सारे पुल टूट जाएंगे, सड़कें खराब हो जाएंगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, क्या होगा, दवाइयां आएंगी, आपके थायराइड की दवाई आएगी, ब्लड प्रेशर डायबिटीज की दवाई मिलेगी, अभी तो आप रोज खाते हो तो आप काम कर लेते हो, एसिडिटी की दवाई मिलेगी, नहीं मिलेगी। तब बिना दवाई के भी आपको ठीक रहना है, उसके बिना भी दवाई के भी बाबा को याद करना है, बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, तो यह अभ्यास अभी से करना चाहिए। नहीं प्रकृति जीत माना, दवाइयों पे डिपेंडेंस कम से कम हो जाए, डॉक्टर पे डिपेंडेंस कम से कम हो जाए। मेरा सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है दुनिया का, शिव बाबा ना, तो शिव बाबा से इतनी अच्छी गहरी अनुभूतियां हम कर सकते हैं, वंडरफुल अनुभूतियां होती हैं। मुझे एक बार याद है, हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं सारा दिन भी पेशेंट देखता रहा, पेशेंट तो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, जिसे हम दिल वाले कहते हैं उनको, तो सारा दिन मैं बिजी रहा, कभी किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाए, कभी किसी की तबीयत, कभी किसी की, कभी किसी की, उस सारी रात में पेशेंट, और मेरे को 3 बज गए पेशेंट देखते थे, दिन में भी सारा दिन काम किया, रात को भी 3 बज गए, और मैं बहुत थक गया, बहुत थक गया, थक गया मैं इतना कि मेरे शरीर में रोम रोम में दर्द हो रहा था। तो अब 3:30 बजे उठने का टाइम होता है, तो मैं 3 बजे कमरे में आया, मैंने कहा बाबा आज तो मेरा शरीर में इतना दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, मैं आज तो आज और सारे दिन फिर मुझे ही काम करना होता था, हॉस्पिटल में पेशेंट देखो, उनको पढ़ाओ भी, हार्ट के पेशेंट्स को पढ़ाओ भी, क्लासेस भी कराओ, सब कुछ कराओ, वॉकिंग भी कराओ, सब कुछ साथ साथ करना होता है, और बीच में जाके दूसरे पेशेंट भी देखो, उनकी तबीयत भी खराब होती है, उनको भी देखो। तो मैंने कहा बाबा आज तो मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास आधा घंटा बचा, आधा घंटे में कितना सोऊंगा, मैं सो भी नहीं सकता हूं, अभी मैं क्या करूं, आज से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैंने बाबा को ऐसे बोला। फिर मुझे ध्यान आया, तो बड़ी दादी थी ना, दादी प्रकाशमणि जो थी, दादी कभी कभी मुझे कहा करती थी, गुप्ता जी जब मैं थक जाती हूँ ना, बाबा मेरी मालिश कर देता है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ऐसे मैं बाबा से ऐसे ना अंदर अंदर बात कर रहा हूँ, बाबा आप दादी की मालिश करते हो, मेरी नहीं कर सकते हो। और मुझे, मैं आपको बताऊं, ऐसे बेड पे बैठे बैठे मुझे क्या हुआ कि एक सेकंड में ना जैसे ऐसे आया, ऐसे कुछ अंदर से फील होने लगा, जैसे यहां से कुछ कुछ हो रहा है, यहां से कुछ कुछ हो रहा है, फिर यहां से अंदर अंदर पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे कुछ कुछ होते होते सारी बॉडी में, ऊपर से नीचे तक, पैरों तक, और मैं समझता शायद 1 मिनट भी लगा हुआ, 1.5 मिनट में ही सारी बॉडी फूल जैसी हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं 8 घंटे सो लिया हूं, इतना फ्रेश हो गया। तो बाबा जो है इतना बड़ा सर्जन है, बिना किसी हाथ लगाए भी आपको ठीक कर सकता है, कुछ भी बीमारी ठीक कर सकता है। अभी जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट आते हैं ना, अभी जब ग्रुप आया हुआ है, अभी भी आपके सामने ही हॉल नंबर 85 में उनका प्रोग्राम चल रहा है, तो वो मतलब जब योग होता है, जब हमारा यहां पर जो हम सिखाते हैं उनको, तो जब बाबा उनका ऑपरेशन कर देता है, उनके ब्लॉकेज खोल देता है, जो 4 घंटे में, 4 घंटे का ऑपरेशन होने के बाद तो भी लोग 15 दिन अस्पताल में रहते हैं, 3 महीने उनको टांके भरने में लगते हैं, अच्छे से चलने फिरने में लगते हैं, और हमारे जो दिल वाले हैं, बाबा ऑपरेशन शाम के सेशन में आधा घंटा में सारे 70-80 दिल वालों का ऑपरेशन कर देता है, और फिर वो तुरंत उनके बाद उनको तुरंत उनका डांस होता है 1 घंटा। तो ये बाबा का वंडर है, आधे घंटे में 80 ऑपरेशन, है ना, आधे घंटे में 80 ऑपरेशन और फिर तुरंत डांस, ऑपरेशन थिएटर में डांस, तो कितना बढ़िया सर्जन है। और बिना टांके के ऑपरेशन, बिना चीरफाड़ का ऑपरेशन, तो बाबा ऐसा वंडरफुल ऑपरेशन करता है। तो ऐसी हमारी प्रकृति जीत, कोई बीमारी भी हो अगर हमें सच्चा विश्वास है बाबा के ऊपर, तो हमारा एक नाम ही होनी चाहिए। एक नाम ही माना, जब भी कोई बात हो, आपको सिर दर्द हुआ, कुछ तकलीफ हुई, दिल में दर्द हुई, पेट में गैस बनी, तो बाबा से बाबा याद आना चाहिए, डॉक्टर याद नहीं आना चाहिए। मैंने देखा बाबा ही ठीक कर देता, हालांकि मैं डॉक्टर खुद हूं, हार्ट का डॉक्टर हूं, किंतु मैंने देखा है कि सचमुच में बाबा मेरे को हार्ट, मेरे को भी हार्ट की वैसे बीमारी है, तो बाबा। और मेरा ना, मेरी आंख में एक ट्यूमर था, गांठ थी मेरी आंख में, और गांठ थी तो उसका ऑपरेशन हुआ तो नस, उसने डॉक्टर ने नस काट दी है पूरी यहाँ की, तो मेरे आधे सिर में बड़ी जोर से दर्द उठने लगे, करंट वाले दर्द उठते थे, करंट ऐसे जोर से करंट, और इतने जोर से दर्द लगे, दर्द होती है इसमें, सिर आदमी दीवार में मारने को दिल करता है। तो मेरे को जिस रात से दर्द शुरू हुआ, ये वाला दर्द ऑपरेशन 2.5 महीने बाद शुरू हुआ, तो मैंने बाबा को कहा बाबा इसकी दवाई तो मुझे पता है, मैंने कहा दवाई लूंगा, पर मैंने कहा अमृत वाले पहले बाबा से पूछूंगा, बाबा क्या करूं। तो बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा मेरे दर्द शुरू हुआ, सारी रात मुझे दर्द रहा, आज मैं इतने जोर से दर्द उठ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा मैं तो आपको गिफ्ट दी है ये वाली। मैंने कहा बाबा ये गिफ्ट, इसमें क्या गिफ्ट वाली बात है। बाबा कहते बच्चे तुम निरंतर याद में रहोगे ना, तुम्हें दर्द महसूस ही नहीं होगा, जैसे याद से बाहर आओगे दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखो बाबा की गिफ्ट मिली, नहीं गिफ्ट है कि ये ब्लेसिंग है कि वो है कर्स है, श्राप है कि गिफ्ट है, गिफ्ट है ना। तो मेरे को गिफ्ट मिल गई कि निरंतर याद में रहने की, हर समय टेंशन रखने की, मैं आत्मा हूं। उसके पहले नहीं रहती थी, उसके पहले बीच बीच में भूल जाते थे। अब जैसे ही मैं समझता हूं मैं सतीश गुप्ता, मेरे फीलिंग भी आए ना, मैं खुली बात फील, कोई बात फील भी हो जाए दर्द होना शुरू हो जाता है। फायदा हो गया कि नुकसान हो गया। ऐसे हर बात को डायबिटीज माना, आपके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, संबंधों में कड़वाहट, सबको माफ कर दो, सबसे मीठा बोलो, मीठा व्यवहार करो, तो देखो डायबिटीज आपकी इतनी कम हो जाएगी, इंसुलिन छूट जाएगी, गोलियां भी छूट जाएंगी। ब्लड प्रेशर माना, आपके अंदर आपकी टेंशन बहुत ज्यादा आपके अंदर है, वो टेंशन को रिलीज कर दो, माफी मांग लो, खुद से माफी मांग लो, दूसरों से माफी मांग लो, देखो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे दवाइयां हट जाएंगी धीरे धीरे। ऐसे हजारों पेशेंट्स की दवाइयां छूट जाती हैं, ठीक है। एसिडिटी माना, आप बहुत फीलिंग करते हो, हर बात को फील कर लेते हो, किसने कुछ कहा उसकी बात को सोचते रहते हो, बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो इससे ज्यादा बनता है। आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, सबको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, जो जैसा है बहुत अच्छा है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, सबको एक्सेप्ट कर लो, ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो देखो आपका एसिडिटी बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रकृति जीत बन जाएंगे। पर निरंतर याद रखो, बाबा की याद माना, योग माना, मेडिटेशन माना, निरंतर उठते बैठते खाते पीते जैसे श्वास लेते हैं ना, निरंतर बाप की याद रहे, ABCD को अनुभव करते रहो, बाबा की मुरली को रिवाइज करते रहो, उस पर मनन चिंतन मंथन सिमरण करते रहो, तो आप देखेंगे आप प्रकृति जीत भी, पहले तो आप कर्मेंद्री जीत बन जाएंगे, पांचों कर्मेंद्रियां आपके वश में आ जाएंगी। जो कुछ भी खाओगे आसक्ति से नहीं खाओगे, भोग समझ के, ब्रह्मा भोजन समझ के बहुत थोड़ा सा खाओगे, और फिर माया जीत, पांचों विकार आपके वश में आ जाएंगे। और तीसरी बात, ये शरीर आपका साथ देगा, और जब ऐसी तीनों बातें, तो आप विक्रमा जीत बन जाओगे। विक्रमा जीत बनोगे तो लाइट, आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, फुल चार्ज होगी तो आप फरिश्ता बन जाओगे। एवेक्ट फरिश्ता बन के सारे विश्व की सेवा करके हम बाबा के साथ वापिस परमधाम घर में जाएंगे। ओम शांति।